इप्सिता उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। तभी पल्लवी, जो गुस्से से तिलमिला उठी थी, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन दोनों की शादी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ ये दोनों सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, वो भी इसलिए ताकि मेरा बेटा राजा ना बन पाए। अभिनव ये सारी बातें सुनकर मंडप से निकलकर बाहर आया और वो नरेंद्र के बगल में आकर खड़ा हुआ। नरेंद्र उसे देखकर बोला, अगर तुम लोग सिर्फ शादी का दिखावा कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं अपने बेटे की आज ही शादी कराऊंगा और राज्याभिषेक तो उसका ही होगा। पल्लवी, आप कनिका को मंडप में बिठाइए और शादी को संपन्न करिए। अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखा, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी। वहीं अर्पिता धीरे से आगे बढ़ी और उसने अभिमन्यु के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई सा, क्या ये बात सच है, आपने इप्सिता भाभीसा के साथ शादी की है? अभिमन्यु ने अर्पिता से कहा, हमने इप्सिता से कोर्ट मैरिज की है और ये रहे उसके पेपर्स। इतना बोलकर अभिमन्यु ने उदय की तरफ देखा। उदय ने अपने कोट की जेब से उन पेपर्स को निकाला। अभिमन्यु ने वो पेपर्स उदय के हाथ से लिए और उसे नरेंद्र की आंखों के सामने करते हुए कहा, ये रहा हमारी शादी का प्रूफ, हमने लीगली मैरिज की है, इप्सिता लीगली तौर पर हमारी पत्नी है और अब राजवंशी परिवार का कुंवर होने के नाते अब जब हमारी शादी हो गई है तो अब हमें राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मासा ने अभिमन्यु की ये बात सुनी और धीरे से बस अपना सिर हिला दिया। वो इप्सिता की तरफ अभी भी बड़ी हैरानी से देख रही थी। वहीं पल्लवी ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, नहीं, हम नहीं मानते शादी को। इतना बोलकर पल्लवी ने जल्दी से उन पेपर्स को लिया और उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया और कहा, कोई सबूत नहीं बचा अब। इतना बोलकर वो फटे हुए पेपर्स की तरफ देखकर मुस्कुराई और तभी नरेंद्र ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अभिमन्यु ने फटे हुए पेपर्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाची सा, क्या आपको सच में लगता है कि हम यहाँ पर अपनी असली पेपर लेकर आए होंगे? ये डुप्लीकेट पेपर्स हैं, असली पेपर्स तो हमारे पहले ही कोर्ट में जमा हो चुके हैं। अब आप तो क्या, भगवान भी हमारी शादी को झुठला नहीं सकते। अभिमन्यु इतना बोलकर इप्सिता की तरफ देखने लगा। मासा इप्सिता और अभिमन्यु के हाथ की तरफ देख रही थी, जिस तरह से अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। वहीं नरेंद्र ने अपने मन में कहा, नहीं नहीं, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती और अगर अभिमन्यु ने इससे शादी कर ली है तो सच में फिर हमारे अभिनव का तो कोई चांस ही नहीं और हमारी सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम इस तरह से अपने प्लान पर पानी फिरते हुए तो नहीं देख सकते। नरेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसके दिमाग में ये बातें बार बार घूम घूम कर आ रही थीं। वो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो वो इस समय बोलकर अपने अभिनव की कनिका के साथ शादी करवा दे। अभिमन्यु नरेंद्र को इस तरह सोच में डूबा देखकर बोला, चाचा सा, आप क्या सोच रहे हैं, जरा हमें भी तो बताइए, और वैसे भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आपको किसी भी चीज की जिम्मेदारी इतनी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की। राजमहल की सारी टेंशन को क्लियर करना हमें बहुत पहले से आता है। आप अगर इन चीजों के बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने मुनीम जी की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, हमारे राज्याभिषेक की तैयारी करिए, दो दिन में हमारा रिसेप्शन होगा और उसी दिन हम अपना राज्याभिषेक करेंगे। मासा, ठीक रहेगा ना? मासा ने धीरे से बस अपना सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। नरेंद्र ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, लेकिन ये लड़की हमारे राजवंश खानदान की बहू नहीं बन सकती। अभिमन्यु ने नरेंद्र की बात सुनकर बिल्कुल शांत हो गया और वहीं नरेंद्र ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, हमारे राजवंश खानदान में अभी तक अच्छे खानदान की बहू आई है और अभिमन्यु, आप इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जबकि ये अपने परिवार वालों से अलग हो चुकी है और उसका किसी भी राजघराने से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये हमारे राजघराने की बहू कैसे बन सकती है? और वैसे भी मैंने इस लड़की को छोटे छोटे कपड़े पहनकर मॉडलिंग करते हुए देखा है। हमारे घर की बेटियां और बहुएं इस तरह के ना ही कपड़े पहनती हैं और ना ही मॉडलिंग करती हैं। जैसे ही इप्सिता ने नरेंद्र की ये बात सुनी, वो उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हुए बोली, चाचा सा, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो मेरा काम है और हम अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे। राजघराने से हमारा नाता हो या ना हो, लेकिन हम अभी भी राजघराने की ही बेटी कहलाते हैं। इप्सिता की ये बात सुनकर नरेंद्र ने उसे गुस्से से घूरा और उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मुझे चाचा कहा तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा रिश्ता इस राजवंशी खानदान से जुड़ने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक मैं जानता हूँ, भाभीसा भी तुम्हारे जैसी मॉडल को तो अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। क्यों भाभीसा? इतना बोलकर नरेंद्र मासा की तरफ देखने लगा। अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखा क्योंकि मासा इस समय बिल्कुल शांत खड़ी थी, उन्होंने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मासा को इस तरह इतना शांत देखकर अभिमन्यु के दिमाग में कई सारी बातें आने लगी और उसने धीमी आवाज में कहा, मासा, इस तरह चुप बैठी हैं तो इसका मतलब कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। इप्सिता अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखने लगी क्योंकि मासा ने नरेंद्र की ये बात सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं बोला था। मासा के कुछ ना बोलने से अब नरेंद्र की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अभिमन्यु को घूरते हुए देखकर कहा, देखा अभिमन्यु,
अब तुम्हारी मासा भी इस बात से सहमत है। इसका मतलब समझते हो ना आप, ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। जाइए, जाकर किसी अच्छे और बड़े राजघराने की लड़की को ढूंढिए, जो इज्जतदार परिवार से हो और अपने माँ बाप के साथ रहती हो, ना कि अपने माँ बाप को छोड़कर चंद पैसों के लिए छोटे कपड़े पहनकर अपनी जिस्म की नुमाइश करती हो। उदय, जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा था, जब उसने नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनी तो वो आगे बढ़ा और उसने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पर आपकी इज्जत करने की वजह से चुपचाप खड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बहन के लिए कुछ भी बोलेंगे जो आपके मुंह में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्या मतलब है आपका कि अच्छे घराने की लड़की? क्या कहने का मतलब है आपका कि हमारी इशू अच्छे घराने की नहीं है? और रही बात हमारे मम्मी पापा की, तो वो अगर हमारे मम्मी पापा से दूर रहती है तो वो अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ रहती है, और अगर वो हमारे साथ ना भी रहे तो भी आपको कोई हक नहीं कि आप इस तरह से उसके बारे में कुछ भी अपशब्द बोले। आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ और शांति से ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उदय इप्सिता का स्टैंड लेने के लिए उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने जब नरेंद्र से ये बात बोली तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही। वहीं अभिनव ने अभिमन्यु, उदय और इप्सिता की तरफ देखकर अपने मन में कहा, अब तो मुझे लग रहा है जैसे मैं बेकार में ही यहाँ पर फंस गया हूँ। अभिमन्यु ने अभिनव की तरफ देखा। वो जिस तरह से सोच में डूबा हुआ था उसे देखकर अभिमन्यु उसके करीब आकर बोला, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और बेहतर होगा कि अगर आप खुद ब खुद हमारे सामने से हट जाते हैं, क्योंकि आप भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अभिमन्यु की बात सुनकर अभिनव की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उससे और कुछ बोल भी पाए और वो तुरंत दो कदम पीछे हट गया।
पल्लवी उसे इस तरह पीछे हटते कर बोली, नहीं अभिनव बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ और आप इस घर के बड़े बेटे हैं, आप ही राजवंशी परिवार के राजा बनेंगे। पल्लवी बौखलाई हुई ये बात बोल रही थी, तभी अभिमन्यु ने नरेंद्र की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, नहीं चाची सा, गलत बोला आपने, राजवंशी खानदान की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान बात नहीं है और हमें नहीं लगता हमारे अलावा कोई भी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से उठा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप ही इस बात को सोचना छोड़ दें और हमारे बीच में ना बोलें। मुनीम जी, हमारे राज्याभिषेक और रिसेप्शन की तैयारी करिए, सारे मीडिया और हमारे सारे बिजनेस पार्टनर को इन्विटेशन दीजिए। मुनीम ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है कुंवर सा। नरेंद्र ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी आंखों के सामने तुम राजा नहीं बनोगे। अभिमन्यु ने नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपकी आंखों के सामने नहीं तो आपकी उपस्थिति के बिना हम राजा बनेंगे। हमारा राज्याभिषेक तो परसों होकर रहेगा और अब जो हम चाहेंगे वही होगा। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी, अब और नहीं। और वैसे भी ये मत भूलिए चाचा सा कि आप जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अगर आपने हमारे सामने आने की या हमारे किसी भी काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश की या फिर से इप्सिता पर कोई भी हमला करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस बार अगर हमने आपको जेल भेजा तो किसी की भी जमानत पर आप बाहर नहीं आ पाएंगे। अभिमन्यु ने बिल्कुल सख्त आवाज में ये बात कही। नरेंद्र उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अभिमन्यु आप हमें धमकी दे रहे हैं,